हकीकत यह कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नुम है जिसमें ना वो जिएगा ना मरेगा। सोचिए हथकड़ियों में लगा हुआ एक शख्स जहन्नुम में जा रहा है, अपने साथ ही सोच लीजिए, चाहते हैं कल हथकड़ियां लगे, हैंडकफ्स लगे और हम जा रहे हैं जहन्नुम की तरफ और ना जिए ना मरे। और जो इसके हजूर मोमिन की हैसियत से पेश होगा जिसने अमल नेक किए होंगे ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं, सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और इनमें वो हमेशा रहेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये जज़ा है उसकी जो पाकीज़गी इख्तियार करे। किस चीज की पाकीज़गी? सोच की, दिल की। सबसे पहले दिल को शिर्क से पाक करो, नजरों को, कानों को, हाथों को, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें क्या देता है। अब मूसा की जिंदगी का वो दौर चल रहा है जब फिरौन के डूबने का वक्त आ गया। हमने मूसा पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ो और इनके लिए समंदर में एक सूखी सड़क बना ले, तुझे किसी पीछा करने वाले का जरा खौफ ना हो और न समंदर के बीच से गुजरते हुए डर लगे। आज के मुसलमानों को भी यही इंस्ट्रक्शन है, मत डरो, अल्लाह बचाने वाला बड़ा है पकड़ने वालों की निस्बत। पीछे से फिरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समंदर इन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक। अल्लाह ने समंदरों में रास्ते बना दिए मुसलमानों के तवक्कुल की वजह से, और ताकत का भरोसा करने वाला उस समंदर में डूब गया। और हकीकत है कि फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया था और कोई सही रहनुमाई नहीं की। यहां मूसा की जिंदगी का एक मिशन पूरा हुआ, लिख लें। फिरौन डूब गया, बनी इसराइल आजाद हो गई। अब यहाँ सेकंड दौर है, कह लीजिए नबूवत से निकलकर अब रिसालत का सफर है, क्योंकि किताब मिलने लगी है। ए बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाई जाने तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुकर्रर किया और तुम पर मनो सलवा उतारा। खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिस्क और उसे खाकर सरकशी न करो, वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा और जिस पर भी मेरा गजब टूटा वो तो गिर कर ही रहा। सच, जब मुसलमानों पर अल्लाह का गजब टूटता है तो फिर इंसान मुसलमान उठ नहीं पाते। हाँ मगर अब क्या करें फिर? अलबत्ता जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधा चलता रहे, इनके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह मैं इन सब चीजों पर अमल की तौफीक दे। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई है मूसा? मूसा का शौक देखिए, इल्म के लिए वक्त से पहले आ गए। उन्होंने अर्ज किया, वो बस मेरे पीछे ही आ रहे हैं और मैं जल्दी करके तेरे हजूर आ गया हूँ ए रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। हम भी चाहते हैं वक्त से पहले आए और अल्लाह खुश हो। सबसे पहले जो एंटर होगा होता होगा स्कूल में, अल्लाह को उस पर कितना प्यार आता होगा। अल्लाह हमें पहलों में करते। फरमाया, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामरी ने इनको गुमराह कर डाला। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटे। किस बात का गुस्सा था? शिर्क बर्दाश्त नहीं कर सके। जाकर उन्होंने कहा, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते हो कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने जवाब दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की। मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस इनको फेंक दिया। फिर इसी तरह सामरी ने भी कुछ कर डाला और इनके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया जिसमें से एक बैल की सी आवाज निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा रब? और मूसा, मूसा का खुदा? मूसा उसे भूल गया, देखिए बदगुमान कर रहा है। और लोगों को ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं, क्या वो देखते नहीं? ना वो इनसे बात का जवाब देता है, ना इनके नफा नुकसान का इख्तियार देता है। हारून मूसा के आने से पहले इनसे कह चुके थे कि लोगों तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। कितनी समझदारी हजरत हारून में। मगर उन्होंने इनसे कह दिया, हम तो इसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए, यानी मूसा के आने तक हालात को कंट्रोल में रखो। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को डांटने के बाद हारून अलैहिस्सलाम की तरफ पलटे और बोले, हारून जब आपने देखा था कि ये गुमराह हो गए हैं तो किस चीज ने आपका हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल ना करो? यानी जब किसी को जिम्मेदार दिया तो बाद में रिपोर्ट तो लेनी थी और अगर कुछ मिसमैनेजमेंट थी तो तरबियत तो करनी थी। क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की? हारून ने जवाब दिया, मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी ना पकड़। क्या पता चला कि मूसा की दाढ़ी थी? कभी क्लीन शेव जहन में आते हैं मूसा? हारून अलैहिस्सलाम क्लीन शेव दिखते हैं? तो आज उनसे नस्बतें जोड़ने वाले क्या है? हजरत ईसा का सोचे तो कैसे जहन में आते हैं? सूटेड बूटेड। तो कौमें क्यों दूसरी तरफ चली जाती है? अगर रोल मॉडल बनाना है तो नबियों को बना लीजिए। कहने लगे, मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास न किया। मूसा ने कहा, और सामरी तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर न आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और इसको डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। मूसा ने कहा, अच्छा तू जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना। कहते हैं ये सामरी जिसने बछड़ा बनाया था, अल्लाह की तरफ से इसको एक पकड़ थी, बुखार हो गया, जिस चीज को छूता वो जल जाती और पूरा वक्त इसी तरह जलता रहता था। लोगों ने इसको तन्हा छोड़ दिया और तेरे लिए बाजपुरस का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और देख अपने इस खुदा को जिस पर तू रिझा हुआ था, अब हम इसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे। लोगों तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं, हर चीज पर इसका इल्म हावी है। ये क्यों चलाया बछड़ा? पकड़ के किसी म्यूजियम में क्यों नहीं रख दिया? एंटीक शॉप पे रख देते? कितने बुरे लोग थे, कल्चर की हिफाजत ही नहीं की। आज भी यही होता है। तो याद रखिए, शिर्क के आसार मिटाए जाएंगे तो दिलों से शिर्क जाएगा। ऐसी चीजों को म्यूजियम में रखे, आने वाले उन्हीं को पूछने लगते हैं, पैसे दे दे के जाके उनको देखते हैं। अब यहाँ किससे पूरे हुए? सूरत का खात्मा। अल्लाह अपने नबी को पुकारते हैं, नबी इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें आपको सुनाते हैं, और हमने खास अपने हाथ से आपको एक जिक्र यानी दर्स नसीहत अता किया। कौन सा? इस वक्त आपके मेरे सामने करना क्या है, इसको लेना है, और जो नहीं लेता वो मनारदान खुफा इन्नहु यहमिल यौमल क़ियामति विसरा, जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के रोज सख्त गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग हमेशा इसके बवाल में गिरफ्तार रहेंगे और क़यामत के दिन इनके लिए इस जुर्म की जिम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ दे होगा। दुआ करें अल्लाह हमें इससे इराज से बचा ले, इस कुरान से इराज ना करें। उस दिन जबकि सूर फूका जाएगा और हम मुजरिमों को इसी हाल में घेर लाएंगे कि इनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी। आपस में चुपके चुपके कहेंगे, दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। सोचिए ये दुनिया की हकीकत, हमें खूब मालूम है वो क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त इनमें से जो ज्यादा से ज्यादा मुख्तात अंदाजे लगाने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी दुनिया की बस एक दिन की जिंदगी थी। लिखिए, एक दिन के लिए हमेशा की आखिरत खराब कर देंगे। ये लोग तुमसे पूछते हैं, आखिर इस दिन के पहाड़ कहाँ चले जाएंगे? यानी असल देखने के लिए कि उस दिन होना क्या, फिक्र करने की बजाय साइड इश्यूज में उलझाते हैं कि अच्छा क्यामत के दिन पहाड़ों का क्या होगा, फिर तुम अपनी फिक्र करो। तो क्या कहो, मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार और चटियल मैदान बना देगा कि इसमें तुम कोई बल और सलवट ना देखोगे। क्यों मिला? ताकि कोई किसी चीज के पीछे छुप के हिसाब से ना बच जाए। इस रोज सब लोग एक मुनादी यानी एक पुकारने वाले की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई जरा अकड़ ना दिखा सकेगा। हाईलाइट करें, जो अकड़ने दुनिया में अकड़ लें, आखिरत में कोई अकड़ नहीं होगी, गुंजाइश ही नहीं है। और आवाज रहमान के आगे तब जाएंगी, एक सर सराहट के सिवा तुम कुछ न सुनोगे। इस रोज शिफात कारगर न होगी, हाँ मगर किसी को रहमान इसकी इजाजत दे दे और इसकी बात सुनना पसंद करे। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को इसका पूरा इल्म नहीं है। लोगों के सर उस हय्युल कय्यूम के आगे झुक जाएंगे। आज झुक जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ना मुराद होगा उस वक्त जो किसी जुल्म का बोझ गुनाह के तौर पर उठाए हो और किसी पर जुल्म या हक तलफी का खतरा ना होगा। वमैया अमल मिनस सालिहाति वहुवा मोमिन, और जो कोई उस वक्त नेक अमल करे और इसके साथ वो मोमिन भी हो, उसको फायदा होगा, उसको हक तलफी का खतरा ना होगा। और नबी, इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी बनाकर नाजिल किया और इसमें तरह तरह की तंबीहात हैं, शायद के लोग कजरवी से बचे या इनमें कुछ होश के आसार इसकी बदौलत पैदा हो। हाईलाइट कीजिए, कुरान का मकसद लोग टेढ़ेपन से बच जाए, जब समझ आएगा ना फिर बात बनेगी। इसीलिए फरमा, बस बालाओं पर तरह अल्लाह बादशाह हकीकी, और देखो कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ इसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए, और कहो वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। पूरे कुरान हदीस में एक दुआ भी नहीं है कि कुर रब्बि ज़िदनी मालन, क्या अल्लाह मेरा माल बढ़ा दे। कुर रब्बि ज़िदनी औलादन, ऐ अल्लाह मेरा हुसन बढ़ा दे, कपड़े बढ़ा दे। वो दुआएं हमने खुद ही सीख ली दुनिया से। अब आगे आदम और इबलीस का किस्सा। हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गए। ہم نے ان میں عزم کی کمی پائی. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو, نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھلنے لگے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ سے بھٹک گیا. پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کیسے شیطان انسان کو پرووک کرتا ہے, گناہوں پہ اللہ کے خلاف کر دیتا ہے. اور کپڑے اتروا دینا, کم کر دینا شیطان کی طرف ہے, لیکن اوپر پتے لگوا کر اللہ نے ان کا ڈیمیج کنٹرول کیا. آج تک اگر ہمارے کچھ لباس ایسے تھے کہ جو واقعی ستر اور حجاب کے قابل نہیں تھے تو کوئی بات نہیں, اس کو آلٹر کروا لیتے ہیں. بہت چیزیں آج تو مارکیٹ میں اتنا کچھ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو ڈھیلا بھی کرا سکتے ہیں, بیلیں بھی لگا سکتے ہیں, اوپر لائننگز لگا سکتے ہیں, کیونکہ غلطی ہو جائے بڑی بات نہیں ہے, غلطی پہ قائم رہنا مشکل ہے. جو ہی آدم نے اس خیا کے تقاضوں کو پورا کیا ثم اجتبا ربہ فتاب علیہ وہدا, پھر اس کے رب نے اس کو برکزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان جہاں سے اتر جاؤ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. ہائی لائٹ کیجئے گا بڑی پیاری آیتیں آخر میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. یہی لینے تو بیٹھتے ہیں ادھر. فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے, اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اور اس کے برعکس یہ ہے آیت تدبر اس پارے کی, انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کو بھیجیں گے, آنکھیں کھولنے والی آیت ہے. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہے, بیزار ہوں گے, چین نہیں, ڈپریشن ہے, سٹریس ہے, پریشان ہے, دل خوش نہیں ہے, دشمنیاں ہیں, دلوں میں گرجز ہیں, غصے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی جات سے نصیحت سے منہ موڑنے کی سزا. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. ذرا امیجن کریں ان آیتوں کو, کسی کو پتا چل جائے کل تم اندھے ہو جاؤ گے, اور قیامت کے دن جب بلائنڈ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا جیسے آج ہم سب کی ہیں, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تم ہماری آیتوں کو جب کہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا. وَلْكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج اسی طرح تو بھی بھلایا جائے گا. 3 سیکنڈ تک دعائیں مانگے کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. یہ آیتیں آج رمضان میں کھل گئی ہیں, رمضان کے بعد اگر بھلا کے بیٹھ گئے اگلے سال کے لیے دوبارہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ ہو جائے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پہ. پھر کہ ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج سے چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ کے نبی کو نصیحت فصبر علی ما یقولون, پس نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. کیا پتہ چلا جب دین کے نام پہ مخالفتیں ہوں تو تسبیح شروع کر دیں. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور اس دن کے کناروں پر بھی. 5 نمازوں کے اشارے ہیں اس میں. کیوں؟ ہائی لائٹ کیجیے, بڑا یونیک نقطہ ہے ادھر. کیوں کرو, کیوں پڑھو نمازیں؟ لعلک ترضى, شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. ہم کیا سوچتے ہیں, نماز پڑھو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو, یہی سوچتے ہیں نا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے, عبادت کرو تم راضی ہو جاؤ گے. یاد رکھیے جب ہم نیکی کرتے ہیں نا, عبادت کریں یا کوئی نیکی, اللہ بعد میں راضی ہوتا ہے, ہم خود پہلے راضی ہو جاتے ہیں, ہمیں خود اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے اس وقت قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی راضی ہوگا. اچھی سی نماز پڑھیں گے ہمیں مزہ آئے گا, फिर अल्लाह भी हमसे राजी होगा। और रह गई दुनिया, तो निगाह उठाकर भी ना देखो दुनिया की जिंदगी की शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हम इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दे रहे हैं। मत लोगों के बड़े घरों और गाड़ियों को देखो, वो आजमाइश है। तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। अपने अहल याल को नमाज की तलकीन करो और खुद भी इसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुमको देते हैं। और इंजाम की भलाई तकवा के लिए, क्या पता चला रिस्क कमाने के लिए नमाजें और जुमे ना छोड़ो। ये ना हो कि जुमे घर आके पढ़ लो, नमाजें देर से पढ़ो कि रिस्क कमा रहे थे, कोई बरकत नहीं होगी उसमें। वो कहते हैं ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी और मौजा क्यों नहीं लाता, क्या लाएगा? और इतनी प्यारी किताब आ गई, और क्या इसके पास अगले सहीफों की तमाम तालीमात का बयान वाजे नहीं आया? अगर हम इसके आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर यही लोग कहते हैं हमारे परवरदिगार तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा, क्या जलील और रुसवा होने से पहले हम तेरी आयात की पैरवी इख्तियार कर लेते। तो ए नबी इनसे कहो हर एक इंजाम कार के इंतजार में, सोचे मेरा क्या इंजाम होगा, या जन्नत या जहन्नम, देर इज नो थर्ड वे। बस सब मुंतजर रहो, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कौन सीधी राह पर चलने वाले और कौन हिदायत याफ्ता है। तो दुआ करते हैं कि हदीना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधी राह पे रखना, ऐसा ना हो कि इस दुनिया के सफर से गुमराह होके चलूं। तो ये था ये पारा जिसमें हिदायत पाने के बहुत से तरीके थे, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूब इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى